भागवतम चौथा स्कंद 20वां अध्याय। महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। श्लोक संख्या 24।
न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णायुतमेशमेवरः।
और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, हे भगवान, मैं आपसे तादात्म्य की इच्छा नहीं करता, क्योंकि इसमें आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है। मैं तो 10 लाख कान प्राप्त करने का वर मांगता हूं, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखारविंदों से आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुन सकूं। तात्पर्य, पिछले श्लोक में महाराज पृथु ने भगवान को कैवल्यपति कहकर संबोधित किया है, किंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वे कैवल्य चाह रहे हैं। इसका स्पष्टीकरण इस श्लोक में हुआ है। हे भगवान, मैं ऐसा वर नहीं चाहता। महाराज पृथु भगवान की महिमा के श्रवण के लिए 10 लाख कान चाहते हैं। उन्होंने इसका विशेष उल्लेख किया है कि भगवान की महिमा शुद्ध भक्तों के अंतस्थल से निकलती है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। श्री सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से निस्सृत होने के कारण श्रीमद् भागवत और अधिक सुस्वादु बन गया। हम यह सोच सकते हैं कि भगवान की महिमा तो किसी के भी मुख से, चाहे भक्त हो या अभक्त, निकल सकती है, किंतु यहां पर विशेष रूप से उल्लिखित है कि भगवान की महिमा शुद्ध भक्तों के हृदय से निकलनी चाहिए। श्रील सनातन गोस्वामी ने अभक्तों से, अभक्तों के मुख से भगवत महिमा सुनने की पूर्ण मनाही की है। श्रीमद् भागवत के अनेक व्यवसायिक कथावाचक हैं जो अत्यंत अलंकारिक ढंग से कथा कहते हैं, किंतु शुद्ध भक्त उनके मुख से कथा सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि ऐसा महिमा वर्णन मात्र शब्दोच्चारण है। किंतु जब यही महिमा शुद्ध भक्त के मुख से सुनी जाती है तो भगवान की महिमा का तुरंत प्रभाव पड़ता है। भागवत में आए हुए सताम प्रसंगान मम वीर संविदह शब्दों का अर्थ है कि जब शुद्ध भक्त भगवान की महिमा का उच्चारण करता है तो वह प्रभावशाली होती है। ब्रह्मांड में भगवान के असंख्य भक्त हैं और वे अनंत काल से भगवान की महिमा का वर्णन करते रहे हैं, किंतु तो भी उसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए पृथु महाराज ने असंख्य कान मांगे, जिस प्रकार की रूप गोस्वामी ने भी भगवान के गुणगान के लिए लाखों जीभों तथा कानों की याचना की है। दूसरे शब्दों में, यदि हमारे कान निरंतर भगवान की महिमा को सुनने में व्यस्त रहें, तो उन्हें उस मायावादी दर्शन को सुनने का अवकाश ही नहीं मिल सकेगा, जिसके कारण आध्यात्मिक उन्नति संकट में फंसी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि यदि कोई मायावादी चिंतक से भगवान की कार्यकलापों के विषय में सुनता है तो भले ही वह वैदिक साहित्य क्यों न हो, अंततः उसका विनाश हो जाता है। ऐसा मायावादी दर्शन को सुनकर आध्यात्मिक जीवन के परम उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। अनुवाद को दोहराइएगा। हे भगवान, मैं आपसे तादात्म्य की इच्छा नहीं करता, क्योंकि इसमें आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है। मैं तो 10 लाख कान प्राप्त करने का वर मांगता हूं, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखारविंदों से आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुन सकूं। हे कृष्णा, जब भगवान विष्णु महाराज पृथु के यज्ञ स्थल पर प्रकट हुए तो महाराज पृथु ने सुंदर प्रार्थना अर्पण करना आरंभ किया। और कल हम पढ़ रहे थे कि पृथु महाराज ने भगवान से कहा कि मैं तो कोई ऐसे वरदान आपसे नहीं चाह रहा हूं जो कि इस संसार में रहने वाले लोग जो नरक के लिए नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं, या तो फिर नरक में नहीं भी रह रहे हो लेकिन नारकीय जीवन रह रहे हो, तो ऐसे लोग जो वरदान चाहते हैं, ऐसे वरदान मुझे नहीं चाहिए। तो स्पष्ट रूप से महाराज पृथु कहते हैं कि मुझे कोई भौतिक वरदान नहीं चाहिए आपसे। और भगवान को कैवल्यपति ऐसे इन शब्दों से संबोधित करते हैं। कैवल्य मतलब तादात्म्य, अर्थात भगवान के निराकार रूप में लीन हो जाना। वदन्ति तत् तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि परम सत्य को 3 स्तरों में जाना जा सकता है। सबसे पहले है उनका निराकार स्वरूप ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म तेज। लेकिन इस ब्रह्म तेज के भी परे, इसके भी ऊपर, इससे भी श्रेष्ठ स्तर में है भगवान का परमात्मा स्वरूप, जो कि हर एक प्राणी के हृदय में स्थित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। तो यह परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन परमात्मा के स्वरूप के भी श्रेष्ठ है भगवान, भगवान श्री कृष्ण, जो एक व्यक्ति है। भगवान व्यक्ति हैं, निराकार नहीं है। निराकार स्वरूप उनसे उत्पन्न होता है। जो ब्रह्म तेज है, ब्रह्म ज्योति है, वो केवल उनके दिव्य सच्चिदानंद शरीर का तेज है। जिस तरह से सूर्य की किरणें सूरज के शरीर के तेज है, उसी तरह से ये ब्रह्म ज्योति जो है, ये भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर का तेज है। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं, उनका ज्ञान केवल इस निराकार ब्रह्म तक सीमित होता है। जो योगी होते हैं, उनका ज्ञान केवल परमात्मा तक सीमित होता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, वो जानते हैं कि वास्तव में परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है, और निराकार ब्रह्म और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो भक्त होते हैं वो सबसे बुद्धिमान कहलाते हैं, सबसे परम ज्ञानी होते हैं, क्योंकि उनको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है परम सत्य का। जो ज्ञानी होते हैं उनका ज्ञान अधूरा रहता है, क्योंकि केवल ब्रह्म को जानते हैं। योगी, उनका ज्ञान ज्ञानियों से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वो निराकार भी जानते हैं और परमात्मा भी जानते हैं। लेकिन फिर भी उनका ज्ञान अधूरा रहता है, क्योंकि वो भगवान को नहीं जानते, श्री कृष्ण को नहीं जानते। लेकिन जो भक्त होते हैं उनका ज्ञान संपूर्ण होता है, क्योंकि वो ब्रह्म को भी जानते हैं, वो हृदय में स्थित परमात्मा को भी जानते हैं, और इन दोनों के स्रोत और उगम स्थान परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को भी जानते हैं। तो पृथु महाराज भगवान के भक्त हैं, इसलिए वो इस निराकार ब्रह्म के उपासक नहीं है। निराकार ब्रह्म के उपासक क्या चाहते हैं? कि हम इस निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएं और हमारे अस्तित्व को ही हम खत्म कर दें। इसलिए इसको आध्यात्मिक आत्महत्या कहते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है जीवन से, तो आत्महत्या करने का इच्छुक हो जाता है। अपने अस्तित्व को ही नष्ट करने को सोचता है। वैसे तो केवल शरीर को नष्ट कर पाएगा, आत्मा को नष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आत्मा तो अमर है। तो यह हुआ भौतिक स्तर। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो आध्यात्मिक जीवन में साधना करते हैं, जो साधक होते हैं, लेकिन अपने आत्मा को ही खत्म करना चाहते हैं। हालांकि यह संभव नहीं है, फिर भी चाहते हैं। किस तरह से चाहते हैं? सोचते हैं कि निराकार ब्रह्म में मैं लीन हो जाऊंगा तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसको कैवल्य कहते हैं। वास्तव में आत्मा कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। जिस तरह से हरे रंग का तोता जब एक हरे रंग के वृक्ष में प्रवेश कर लेता है तो उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो वैसे ही रहता है। तो उसी तरह से आत्मा जब निराकार ब्रह्म में भी प्रवेश कर लेती है, जैसे ज्ञानी जब प्रवेश करते हैं तो उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी इच्छा है इसलिए भगवान उनको अनुमति देते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। तो इस चीज को कैवल्य कहते हैं। तो भक्त के लिए यह नरक ही है, इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कैवल्यम नरक आयते, कि भक्त के लिए यह कैवल्य की भावना, निराकार ब्रह्म में एक होने की भावना बहुत तुच्छ है, अच्छी नहीं है, नरक के समान है। प्रभुपाद जी समझाया करते थे कि अगर कोई बच्चा मां के गर्भ से जन्म लेता है और बड़ा होकर जीवन से हैरान होकर कहता है कि मां अभी मैं तुम्हारे गोद में फिर से जाना चाहता हूं क्योंकि मैं जीवन से तंग आ गया, तो मां क्या सोचेगी? अरे ये कैसा बच्चा है, मैंने इसको जन्म दिया, 9 महीने गोद में रखा, इतना कष्ट देकर इसको जन्म दिया और बड़ा किया, अब बड़े होने के बाद में कह रहा है कि फिर से गोद में जाना चाहता हूं क्योंकि यहां बहुत मैं हैरान हो चुका हूं। तो उसी तरह से भगवान ने हमें यहां इस भौतिक संसार में जन्म दिया है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्त्याः तासां ब्रह्म महद् योनिर् अहम् बीज प्रदः पिता, मैं बीज प्रदाता हूं सारे योनियों का। अलग अलग योनियों में जीव भ्रमण करती रहती है और जब मनुष्य शरीर में आकर भोग में जब असफल रह जाता है, धक्के खाता है, मां के लात थप्पड़ खाते रहता है, और जब वो कहता कि अभी बहुत हो गया, अब मैं सहन नहीं कर सकता, तो हे प्रभु मुझे आपके गोदी में फिर से स्वीकार कर लीजिए, मैं आपसे एक होना चाहता हूं। तो भगवान सोचते हैं कि अरे ये कैसी भावना है। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस तरह के कैवल्य को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अब पिछले श्लोक में पृथु महाराज ने भगवान को कैवल्य पति इन शब्दों से संबोधित किया, तो शायद इन शब्दों से किसी को ये अनुमान लगाए कि पृथु महाराज भी कैवल्य चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भगवान को कैवल्य पति करके संबोधित किया है। लेकिन इस श्लोक में, आज के श्लोक में, पृथु महाराज ऐसे संशय को दूर करने के लिए स्पष्ट कहते हैं, न कामये नाथ तदप्य अहम क्वचिन। हां, मैंने आपको कैवल्य पति कहा तो अवश्य, लेकिन ऐसा कैवल्य मुझे नहीं चाहिए। कैवल्य पति अर्थात आप उन लोगों के स्वामी हैं जो कैवल्य चाहते हैं, उनके भी स्वामी हैं आप। हमारे स्वामी तो हैं ही, लेकिन सबके स्वामी हैं आप। इसलिए जो कैवल्य चाहते हैं उनको भी आप कैवल्य प्रदान कर देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कैवल्य नहीं चाहिए। भक्त लोग इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, भक्तों का हृदय टूट जाता है इससे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य को जब वो समझा रहे थे, जब सार्वभौम भट्टाचार्य मायावाद दर्शन को उन्होंने स्वीकार किया था, तो चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य का चित्त बदल डाला और कहा कि तुम्हारी धारणा गलत है, भगवान निराकार नहीं है, भगवान श्री कृष्ण है, वो व्यक्ति है, उनका आकार है, और तुम्हारी धारणा जो शंकराचार्य की शारीरिक भाष्य से उत्पन्न हुई है वो गलत है। उन्होंने कहा कि वास्तव में वेद व्यास जी ने जो वेदांत सूत्र लिखा है उसका जो तात्पर्य है वो ये है कि जीव को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जीवर निस्तार लागे सूत्र कोइल व्यास, मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश। उन्होंने कहा कि वेद व्यास जी ने ये वेदांत के सूत्र का निर्माण किया क्यों? जीव के उद्धार के लिए। और जो व्यक्ति इस तरह की मायावादी भाष्य सुनता है जो गलत है, तो क्या होता है? सर्वनाश हो जाता है। तो ये मायावादी भाष्य क्या है? कई बार भक्तों में भी गलत धारणा होती है। कई भक्त ये सोचते हैं कि मायावादी मतलब वो व्यक्ति जो माया में है ना? कई बार हम देखते हैं, कई सालों से भक्ति करने के बाद भी ऐसे कई भक्त हैं जो सोचते हैं कि मायावादी मतलब जो व्यक्ति माया में है। एक बार मंदिर में, राधा गोपीनाथ मंदिर में एक छोटा बच्चा था, तो कहने लगा नीचे आके कि ऊपर बहुत बड़ा मायावादी आया है। सोचा, अरे इसको कैसे पता चला मायावादी है नहीं है? इसको दर्शन शास्त्र कैसे मालूम हो गए कि इसको कैसे पता चला देखने से कि मायावादी है नहीं है? तो फिर उसने कहा, नहीं उसने बहुत फैशनेबल कपड़े पहने हैं, बहुत उसने ऐसे कपड़े पहने। मतलब वो बच्चा कहना चाहता था कि माया में है वो आदमी, मतलब सीधा साधा कपड़ा नहीं पहना उसने, बहुत चमक धमक वाले कपड़े पहने, मतलब माया में है वो। लेकिन केवल बच्चे नहीं, हमारे भक्त भी ऐसे सोचते हैं कभी कभी कि मायावादी मतलब जो माया में है। हाँ, मायावादी लोग तो माया में होते ही हैं, लेकिन मायावादी शब्द का अर्थ ये नहीं है। मायावादी शब्द का अर्थ क्या है, कोई बता सकते हैं? हाँ जी, नहीं वो माया है, वो माया शब्द की परिभाषा है, लेकिन मायावादी ये शब्द का अर्थ क्या है? मायावादी, मायावाद, वाद मतलब दर्शन या धारणा, विचार, वाद। तो मायावाद मतलब वो दर्शन, वो विचार, वो धारणा जिसमें लोग समझते हैं कि भगवान का शरीर भी माया का शरीर है, भगवान भी माया के अधीन है। जो ऐसा सोचते हैं उनको मायावादी कहते हैं। हमारा शरीर माया का बना हुआ है ना, ये तो जड़ पदार्थों से बना हुआ है, तो हमारा शरीर माया का है और हम लोग भी माया के चंगुल में फंसे हुए हैं ना। तो हम लोग माया में हैं, हमारा शरीर माया का है, भौतिक है शरीर, अर्थात माया का है। लेकिन भगवान का शरीर कैसा है? सच्चिदानंद ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हमारा शरीर माया का है, लेकिन भगवान का शरीर कैसा है? सच्चिदानंद चिन्मय शरीर उनका है, आध्यात्मिक है, कण मात्र भी भौतिक कलमश उनके शरीर में चित्त में नहीं है। और भगवान कभी भी माया के अधीन नहीं होते हैं, हमेशा वो माया के स्वामी होते हैं। तो जो व्यक्ति गलत समझता है भगवान को और भगवान को ही हमारे स्तर पर नीचे खींच के ले आता है और सोचता है कि भगवान का शरीर माया के पदार्थों का बना हुआ है, अर्थात उनका शरीर भौतिक है हमारे शरीर जैसे, और जो सोचता है कि भगवान की हमारे जैसे माया में फंसे हुए हैं, उनको मायावादी कहते हैं। तो ये मायावादी लोगों की धारणा क्या होती है कि परम सत्य निराकार है, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये उनकी धारणा होती है कि सत्य संसार में क्या है? केवल निराकार सत्य है बस, और ये सब जो भी भौतिक सृष्टि है सब झूठा है, सब मिथ्या है, और जीव भी मिथ्या है। वास्तव में परब्रह्म माया में पड़ के जीव बन गया, और जब जीव को ज्ञान आ जाता है तो फिर से ब्रह्म बन जाता है, परब्रह्म बन जाता है, भगवान बन जाता है। इसलिए निराकार ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है संसार में, यह है मायावादी दर्शन। तो ठीक है, मायावादी क्या है? मायावादी कौन है? स्पष्ट बताइए। जो भगवान के शरीर को माया का शरीर समझता है, भौतिक समझता है, और जो समझता है कि भगवान निराकार है और माया के अधीन है,
लेकिन वास्तव में माया भगवान के अधीन है। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये माया मेरी दिव्य शक्ति है। ऐसा कभी नहीं होता कि भगवान माया के अधीन होते हैं, माया भगवान के अधीन होते हैं। तो ये मायावादी भाष्य सुनने से बहुत तकलीफ होती है भक्तों को। तो एक बार ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु के पास उनके भक्त आए जिनका नाम था भगवान आचार्य। अब चैतन्य महाप्रभु को मायावाद भाष्य सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था, घृणा करते थे उससे। और ये गोपाल भगवान आचार्य नाम के जो भक्त थे, वास्तव में ये शुद्ध भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के। वास्तव में कृष्ण लीला में वो ग्वालबाल हैं, और इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ में हमेशा हंसी मजाक किया करते थे। तो एक बार वो चैतन्य महाप्रभु के पास आए उनके छोटे भाई को साथ में ले आकर। उनके छोटे भाई का नाम था गोपाल भट्टाचार्य। ये गोपाल भट्टाचार्य बनारस में गए थे, और आप जानते हैं कि बनारस में ये तो मायावादियों की राजधानी है, वहां मायावाद भाष्य बहुत प्रचलित है। जो भी वहां पाठशालाएं वगैरह होती हैं संस्कृत की या अन्य जो भी आश्रम वगैरह हैं, वहां सब स्थानों में मायावाद ही सिखाया जाता है। शंकराचार्य का शारीरक भाष्य सिखाया जाता है। वेदांत सूत्र के ऊपर टीका शंकराचार्य ने की है, और इसको शारीरक भाष्य कहते हैं। और जन साधारण यही समझती है कि वेदांत मतलब शंकराचार्य की टीका, जो कि निराकारवादी है, मायावादी है। लेकिन हमारे वैष्णव आचार्यों ने, चारों वैष्णव संप्रदायों के आचार्यों ने भी टीका लिखी है। तो प्राय लोग इनको नहीं जानते, सोचते हैं कि वेदांत मतलब शारीरक भाष्य शंकराचार्य की। तो बनारस ऐसे धारणा की राजधानी है। तो गोपाल भट्टाचार्य बनारस में शंकराचार्य की टीका शारीरक भाष्य सीख कर आए थे। तो अपने बड़े भाई को मिलने के लिए आए जगन्नाथपुरी में, जहां चैतन्य महाप्रभु निवास करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु को मिलाने के लिए वो गोपाल भट्टाचार्य को लेकर आए। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत समझ गए, क्योंकि वो भी तो स्वयं श्री कृष्ण है, अंतर्यामी है, सबके अंतःकरण में स्थित है। वो तो जानते थे कि ये गोपाल भट्टाचार्य तो मायावादी है, निराकारवादी है, और अभी अभी बनारस से फ्रेश आया हुआ है पढ़ाई करके, प्रचार करने के लिए आया। जैसे कभी कभी लोग नए भक्त बनते हैं ना, तो धुआंधार प्रचार करने के लिए जाते हैं सब जगह, माता पिता को तुम माया में हो, ऐसे है वैसे है करते हैं, फिर झगड़े हो जाते हैं। तो जानते थे कि ये तो अभी अभी आए हैं काशी से और मायावादी हैं, तो उनको हृदय में प्रसन्नता नहीं हुई। लेकिन फिर भी, क्योंकि वो एक शुद्ध भक्त के भाई थे, भगवान आचार्य उनके बहुत प्रिय थे, तो बाहरी बाहर से उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की, कैसे हो, अच्छे हो, हंसे उनको देखकर, लेकिन अंदर से खुश नहीं थे। तो खैर, फिर भगवान आचार्य ने गोपाल भट्टाचार्य को स्वरूप दामोदर गोस्वामी से मिलाया। और फिर जब गोपाल भट्टाचार्य चले गए, तो उस समय भगवान आचार्य ने स्वरूप दामोदर से कहा कि स्वरूप दामोदर, हमें गोपाल भट्टाचार्य से वेदांत की टीका सुननी चाहिए, बहुत विद्वान है वो, मेरा छोटा भाई है, और बनारस से बहुत कुछ सीखकर आया है। तो स्वरूप दामोदर और भगवान आचार्य की लीला बहुत सारी है। बेचारे भगवान आचार्य को हमेशा डांट सुननी पड़ती थी स्वरूप दामोदर से, और भी कई ऐसे लीला है, कभी और आपको सुनाएंगे। तो भगवान आचार्य कोई ना कोई ऐसा प्रस्ताव सामने लाके रखते थे, और स्वरूप दामोदर सोचते थे कि कैसे प्रस्ताव लाया है, और फिर डांटते थे उनको प्रेम से, क्योंकि प्रेम था। तो उन्होंने, स्वरूप दामोदर ने डांटा, बुद्धि भ्रष्ट हो लो तुम्हार गोपाले रसंगे, मायावादी शुनिबार उपजिल रंगे, कि ये गोपाल तुम्हारा भाई है, मतलब श्री गोपाल नहीं, कृष्ण गोपाल नहीं, ये गोपाल तुम्हारा जो भाई है उसके संग में तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मायावादी शून्यवार उपजिले रंगे, तुम्हारे मन में मायावाद भाष्य सुनने की इच्छा जागृत हो गई है, ये कैसी मूर्खता है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो उस समय स्वरूप दामोदर, भगवान आचार्य ने कहा, नहीं नहीं ये तो काशी से आया है। तो उस समय स्वरूप दामोदर ने कहा, वैष्णव है वा होना जब शरीर का भाष्य सुने सेव्य सेवक भाव छाड़ी आपनार ईश्वर माने। वो कहते हैं जब कोई व्यक्ति वैष्णव हो जाता है और मायावादी भाष्य सुनने का इच्छुक हो जाता है, सेव्य सेवक भाव छाड़ी ईश्वर भाव माने। सेव्य और सेवक दो चीजें हैं। सेव्य कौन है? सेवा स्वीकार करने वाला योग्य कौन है? भगवान। और सेवक कौन है? जीव, हम हैं। हम सेवक हैं, भगवान सेव्य है। तो जब कोई भक्त मायावादी भाष्य सुनता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और ये सेवा सेव्य और सेवक की का जो अंतर है वो भूल जाता है। वो भूल जाता है कि मैं भगवान का दास हूं और भगवान मेरे प्रभु हैं। और फिर क्या मानता है कि मैं ही प्रभु हूं, मैं ही ईश्वर हूं। और इस तरह से जो जीव है वो सोचने लगता है कि वास्तव में यही सबसे ऊंचा स्थान है, भगवान की सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उस समय भगवान आचार्य ने कहा कि स्वरूप दामोदर, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हम सब तो निष्ठावान भक्त हैं, हम तो श्री कृष्ण के चरण कमलों में पक्के अटके हुए हैं, हम तो कभी श्री कृष्ण के चरण कमल छोड़ नहीं सकते। तो अगर हम मायावादी सुनेंगे तो हमारा उसमें क्या नुकसान होगा? उल्टा ये ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, तो उसमें कौन सी बुराई है? तो स्वरूप दामोदर बताते हैं, महाभागवत जय कृष्ण प्राण धन जार मायावादी श्रवण चित्ते अवश्य फिरे तार। वो कहते हैं महाभागवत जार कृष्ण प्रेम धन जार, कि ऐसा महाभागवत व्यक्ति जिसके लिए कृष्ण प्रेम धन है, मायावादी शिविर अवश्य चित्त फिरेता। कि ऐसा भी महाभागवत जिसके लिए कृष्ण प्रेम धन है, अगर वो मायावादी भाष्य सुनता है तो उसका दिमाग भी फिर जाता है, अवश्य चित्त फिरेता। कहते हैं कि महाभागवत भी हो उसका भी दिमाग फिर जाता है तो हम लोग सुनेंगे तो हमारा क्या होगा? इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा था, मायावाद भाष्य सुन ले है सर्वनाश। और आगे स्वरूप दामोदर ने समझाया भगवान आचार्य को, और सुनो जब ये मायावादी लोग कहते क्या है, यही तो कहते हैं कि निराकार ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव मिथ्या है और जीव ही भगवान है, और जीव में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, जीव भगवान बन जाता है। तो ऐसी सब बातें जब भक्त सुनता है तो उसका हृदय टूट जाता है। इसलिए हम ये सब मायावादी भाष्य सुनना पसंद नहीं करते। तो उस समय भगवान आचार्य बड़े शर्मिंदा हो गए और फिर वहां से शर्मिंदा होकर फिर वहां से चले गए और गोपाल आचार्य को फिर से उन्होंने काशी भेज दिया कि जाओ तुम काशी, अब यहां तुम्हारे भक्तों के संग में कोई स्थान नहीं है, तो चले गए। तो इस तरह से महाप्रभु की लीला में ऐसे कई उदाहरण हम देखते हैं जिसमें कि महाप्रभु ने ये साफ साफ व्यक्त किया कि उनको मायावादी लोगों का संग करना पसंद नहीं था, क्योंकि ये मायावादी लोगों की धारणा भक्तों के लिए इतनी दुखदायक है। एक बार सनातन गोस्वामी के साथ में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था रामदास विप्र। ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे, और जब सनातन गोस्वामी जा रहे थे यात्रा में तो उनके संग में ये आए थे और उनका बोझ भी उन्होंने स्वीकार किया, बड़े नम्र थे। और उन्होंने सनातन गोस्वामी से कहा कि आप इतना भारी वजन उठा रहे हो, आपके लिए ठीक नहीं है, ये मेरे सर पर मैं उठा लेता हूं। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि अरे नहीं नहीं, आप ब्राह्मण हैं, इतने ऊंचे भक्त हैं, मैं आपसे सेवा नहीं ले सकता। लेकिन जबरदस्ती उस रामदास विप्र ने वो सेवा स्वीकार कर ली और सनातन गोस्वामी का बोझ जो है वो अपने सर पे रख लिया। और चलते चलते सारे समय 24 घंटे ये राम 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 उच्चारण कर रहे थे, केवल राम का नाम लेते थे ये रामदास विप्र। तो उस समय सनातन गोस्वामी सोचने की, अरे ये तो शुद्ध भक्त है, श्री रामचंद्र के भक्त है। और जब दोनों चैतन्य महाप्रभु के पास आए तो सनातन गोस्वामी ने बड़े अच्छे ढंग से उनको परिचय कराया कि ये रामदास विप्र है, प्रभु राम के भक्त हैं।
लेकिन चैतन्य गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु क्योंकि अंतर्यामी हैं, वो जानते थे कि रामदास विप्र हालांकि बाहर से राम का नाम का उच्चारण कर रहे हैं, हालांकि बाहरी दृष्टि से इतने नम्र हैं, फिर भी अंदर से वो मायावादी हैं। अंदर से वो भगवान में एक लीन होने की इच्छा रख रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने उनकी ओर देखा भी नहीं, केवल सनातन गोस्वामी से बात किया, उनकी ओर बिल्कुल देखा नहीं, तो उस तरह से उनका तिरस्कार कर दिया, क्योंकि जानते थे कि इनकी धारणा गलत है। और एक बार ऐसे भी हुआ कि चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद, नित्य पार्षद, जिनका नाम था मुकुंद दत्त। ये मुकुंद दत्त किस लिए मशहूर थे कोई कह सकते हैं? कीर्तन के लिए, बहुत मधुर कीर्तन गाते थे, बिल्कुल गंधर्व वाणी थी उनकी, इतना मीठा स्वर था उनका, इतने मीठा कीर्तन करते थे कि हमेशा चैतन्य महाप्रभु उनको कीर्तन करने के लिए कहते थे। और जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया तो उस संन्यास दीक्षा के समय भी महाप्रभु ने मुकुंद दत्त से कहा कि तुम कीर्तन करो। ये मुकुंद दत्त वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के साथ में गंगादास पंडित के टोल में पाठशाला में पढ़ा करते थे, उनके हम उम्र के थे, साथ में एक ही कक्षा में पढ़ा करते थे, तो बचपन से ही वो मित्र थे। और जब निमाय पंडित ने अपनी भक्ति के विचार को प्रकट करना आरंभ किया तो उस समय मुकुंद दत्त जो थे वो इधर उधर जाते थे, केवल महाप्रभु के पास नहीं लेकिन और अलग अलग जगह भी जाते थे। और एक बार श्रीवास पंडित के घर में चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को आशीर्वाद दिया लेकिन केवल मुकुंद दत्त को नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि मैं मुकुंद दत्त को आशीर्वाद नहीं दूंगा। तो मुकुंद दत्त को ऐसा लगा कि अब मेरे जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, बड़े परेशान हुए, दुखी हो गए। तो सारे भक्तों ने आके पूछा कि ऐसा क्यों, मुकुंद दत्त तो आपका शुद्ध भक्त है, बचपन से आपका मित्र है, तो आप ऐसा क्यों आपने कहा कि केवल मुकुंद दत्त को आप आशीर्वाद नहीं देंगे? तो महाप्रभु ने जवाब दिया कि ये मुकुंद दत्त जो है हम लोगों के संग में आकर भक्ति का गुणगान करता है, कहता है कि भक्ति सबसे परम मार्ग है और भगवान के नाम का कीर्तन करता है, लेकिन जिस तरह से भक्ति का गुणगान भक्तों के संग में करता है, मायावादियों के संग में जाके मायावाद का गुणगान करता है, सुनता है, फिर कर्मियों के संग में जाके वो सब प्रजल्प करता है, जैसा संग वैसा रंग उसका बन जाता है, अलग अलग संग के हिसाब से उनके उन लोगों की तरह वो बातचीत करने लगता है, तो ये मायावाद भाष्य सुनता है इसलिए मैं उसको अवश्य इसको आशीर्वाद नहीं दूंगा। तो मुकुंद ने सुना तो बहुत पश्चाताप हुआ, सोचा कि मैं क्या करना चाहिए, कैसे, कब मुझे महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। तो जब महाप्रभु ने प्रश्न सुना तो उन्होंने कहा कि कह दो मुकुंद दत्त से कि 10,00,000 जन्म तक उसे मेरी कृपा प्राप्त नहीं होगी। तो भक्त सारे उदास हो गए, उदास होकर मुकुंद दत्त के पास आए, कहने लगे कि महाप्रभु कह रहे हैं कि 10,00,000 जन्म तक वो आप तुमको कृपा नहीं देंगे, तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं देंगे। तो मुकुंद दत्त कूदने लगे, नाचने लगे, केवल 10,00,000 जन्म, केवल 10,00,000 जन्म। बाकी भक्त सोच ले, अरे क्या पागल हो गए, क्या कह रहा, केवल 10,00,000 क्या हो गया ही? तो मुकुंद दत्त कहने लगे कि केवल 10,00,000 जन्म रुक कर महाप्रभु की कृपा मुझे अवश्य प्राप्त होगी, अवश्य प्राप्त होगी, केवल 10,00,000। तो मुकुंद दत्त की निष्ठा और श्रद्धा सुनकर महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और उसी क्षण उनको कृपा की वर्षा कर दी उनके ऊपर, मुकुंद दत्त के ऊपर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुकुंद दत्त को उन्होंने एक ये लीला थी, मुकुंद दत्त को ठुकरा है क्योंकि वो मायावादियों का संग कर रहे थे, इतना नापसंद करते थे महाप्रभु मायावादियों का संग, कोई भी भक्त ऐसे जाता था तो महाप्रभु हमेशा क्रोधित हो जाते थे। अद्वैत आचार्य
वो तो महाप्रभु के नित्य पार्षद थे, आप जानते हैं, स्वयं महाविष्णु के अवतार। लेकिन चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को बहुत ज्यादा सम्मान देते थे, क्योंकि उम्र में अद्वैत आचार्य बहुत उनका अंतर था। अद्वैत आचार्य करीब 40-50 साल से बड़े थे महाप्रभु से, और वैसे भी उनके गुरु के गुरु भाई थे वो। उन्होंने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली थी, और महाप्रभु के गुरु जी ईश्वरपुरी, उन्होंने भी माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली थी। तो इसलिए निमाय पंडित चैतन्य महाप्रभु हमेशा समझते थे कि ये तो मेरे वरिष्ठ हैं, तो मुझे इनको गुरु तुल्य समझना चाहिए। और उधर अद्वैत आचार्य समझते थे कि ये मेरे आराध्य देव हैं। तो अद्वैत आचार्य हमेशा चैतन्य महाप्रभु को पूजनीय समझते थे, और चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को पूजनीय समझते थे। इस तरह से दोनों में स्पर्धा होती थी। तो अद्वैत आचार्य हमेशा सोचते थे कि ये मेरे आराध्य देव हैं, लेकिन ये मुझे पूजनीय समझते थे, ये मेरे लिए क्या विडंबना है, मेरे लिए तो बहुत ये अजीब मुसीबत हो गई है। महाप्रभु सभी को टोकते हैं, सभी को डांटते हैं, लेकिन केवल मुझे वो प्रशंसा का या पूजा का जो कड़वा जो ने कड़वा जो वो पिला रहे हैं, रस पिला रहे हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं, और ऐसे प्रशंसा मेरे लिए बहुत कड़वी है, लेकिन डांट के बहुत मीठा रस वो केवल दूसरे भक्तों को पिला रहे हैं। दूसरों को डांटते मुझे नहीं डांटते, मुझे पूजनीय समझते हैं। तो मुझे कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे मुझे डांट मिलेगी उनसे। तो उन्होंने सोचा कि क्या कार्य करना चाहिए जो कि महाप्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है, जिससे बिल्कुल महाप्रभु गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, मैं मायावादियों के संग में जाके बैठूंगा। तो वहां नवद्वीप में मायावादी लोग भी थोड़े बहुत हुआ करते थे, तो अद्वैत आचार्य उनके संग में गए, और फिर वापस में जानबूझ के आकर भक्तों के बीच में मायावाद भाष्य बोलने लगे। तो जैसे ही महाप्रभु के कानों में ये पहुंच गया कि अद्वैत आचार्य मायावादी भाष्य बोल रहे हैं, तो तुरंत दौड़ते हुए छड़ी लेकर पीटने के लिए अद्वैत आचार्य को, मायावादी भाष्य बोल रहे हो, और जबरदस्त डांट पड़ी अद्वैत आचार्य को। और तभी अद्वैत आचार्य खुशी के मारे कूदने लगे, आज महाप्रभु ने मुझे स्वीकार किया है, आज महाप्रभु ने मुझे स्वीकार किया है। तो इस तरह से ये सुंदर सुंदर लीलाएं हुई चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के संग में। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वास्तव में कितना नापसंद करते थे ये मायावादी भाष्य को। तो इसी तरह से हमें भी जानना चाहिए कि मायावादी लोगों का संग हमें नहीं करना चाहिए। कौन मायावादी है कौन नहीं है ये जानना बहुत मुश्किल होता है। भले ही बाहर के दुनिया में बहुत सारे लोग आकर्षक ढंग से भागवत गीता इत्यादि के ऊपर प्रवचन बोल रहे हों, और भक्ति की बात कर रहे हों, नाम संकीर्तन की बात कर रहे हों, लेकिन कह नहीं सकते कौन मायावादी है और कौन नहीं है। जैसे रामदास विप्र, वो राम 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 24 घंटे बोलते थे, नम्र थे, भक्त की तरह उनका व्यवहार था, लेकिन अंतःकरण में क्या भावना थी कि मुझे राम में लीन होना है। अगर हमने भी ऐसे एक संत के बारे में सुना था, प्रसिद्ध संत थे, बड़े प्रसिद्ध संत थे, खास करके कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में आज भी उनके भाई, छोटे भाई बहुत प्रसिद्ध हैं। तो सभी लोग उनकी बात करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। कई लोग हमारे पास भी आए थे कि ये तो बिल्कुल भक्ति की ही बात करते हैं, केवल नाम संकीर्तन की बात करते हैं। तो जब हमने उनका कैसेट मंगाया, उनका पूरा कैसेट सुना, शुरू से अंत तक केवल भक्ति और नाम संकीर्तन, लेकिन केवल अंत में आखिरी वाक्य उसमें कहते थे कि से फिर हम क्या कर सकते हैं, परब्रह्म में हम प्रवेश कर सकते हैं, लीन हो सकते हैं, सर्वनाश सत्यानाश सब में खीर में मिट्टी डाल ली, तब तक सब ठीक ठाक था, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, हरिनाम ही सब कुछ है, कलयुग में और कोई रास्ता नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक, अंत में केवल ये एक जाकर कुछ विष मिला दिया। इस तरह से कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए बहुत खतरा है, इसलिए हमें यहां उधर उधर जाके सुनने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी ने हमें सुंदर ग्रंथ दिए हैं, सुंदर वैष्णव परंपरा है, संप्रदाय है। केवल शुद्ध भक्तों के संप्रदाय में, परंपरा में ही हमें प्रामाणिक सिद्धांत मिल सकते हैं, नहीं तो नहीं। नहीं तो बहुत खतरा होता है, न जाने कौन सा व्यक्ति क्या बोल रहा है, उसके हृदय में क्या है। भले वो बाहर से भी कुछ बोल रहा हो, भक्ति के बारे में बोल रहा हो, लेकिन उसके हृदय में भी अगर मायावादी धारणा है तो फिर भी ये खतरनाक है। आजकल हम देखते हैं वारकरी संप्रदाय में भी तुकाराम के शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों का कितना तोड़ मोड़ कर दिया है। तुकाराम भगवान के शुद्ध भक्त थे, तुकाराम महाराज भक्ति के अलावा कुछ नहीं जानते थे, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं जानते थे, केवल हरि का संकीर्तन किया कर, हरि के नाम का संकीर्तन किया करते थे। लेकिन आजकल हम कई ऐसे वारकरी संप्रदाय के लोगों से मिल चुके हैं जो कि बिल्कुल मायावादी भाषा बोलते हैं, और उन्होंने तुकाराम महाराज के सिद्धांतों को भी तोड़ मोड़ कर लिया है। इसलिए आजकल कहना मुश्किल है, जो अपने आप को भक्त भी कहलाते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण की उपासना करते हैं, पंडरपुर में आते हैं जाते हैं, वैष्णव माला कंठी माला भी पहनते हैं, लेकिन हो सकता है उनके अंदर भी गलत धारणा हो, क्योंकि मार्गदर्शन उनको सही नहीं मिला है। कई बार इनके जो प्रमुख होते हैं वो भी ऐसी धारणा रखते हैं, हमें स्वयं अनुभव है, ऐसे मिले हैं हम लोगों से, तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि इधर उधर से हम जाके भाष्य भाषण सुने नहीं, केवल प्रामाणिक शुद्ध भक्ति के संप्रदाय में ही हम आए और यहीं से हम भक्ति के मार्ग को स्वीकार करें। वास्तव में जो मायावादी भाष्य सुनते हैं, अगर वो निराकार ब्रह्म में भी जाते हैं तो वहां पर रह नहीं सकते, उनको फिर से लौटकर आना पड़ता है, क्योंकि वहां कोई रस नहीं है। यहां पृथु महाराज बताते हैं, न कामये नाथ तदप्य अहम क्वचित, मुझे केवल की कामना नहीं है, ये वरदान नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? न यत्र युष्म चरण अंबुज आसवः, क्योंकि ऐसे कैवल्य में युष्मच आपके चरण अंबुज, आपके चरण कमलों का क्या नहीं है? आसवः। आसवः मतलब क्या है? रस, टॉनिक। आसव मतलब आपने पिया होगा ना, जैसे आयुर्वेद द्राक्षासव है, अलग अलग तरह के आसव होते हैं आयुर्वेद में। जब किसी का शरीर कमजोर होता है, कोई बीमारी होती है, शरीर को हृष्ट पुष्ट करने के लिए अलग अलग तरह के आयुर्वेद में आसव होते हैं, तो आसवों का पान करने से आदमी हृष्ट पुष्ट भी हो जाता है, उसके चेहरे में तेज आ जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। आसव तो आध्यात्मिक आसव है ये, भगवान के चरण कमल। तो पृथु महाराज कहते हैं कि मुझे ये कैवल्य मार्ग, मायावादियों का मार्ग नहीं चाहिए, भगवान में मुझे लीन नहीं होना है, क्योंकि वहां पर निराकार में लीन हो भी जाऊंगा तो वहां पर आपके चरण कमलों के अमृत का आसव मुझे नहीं मिलेगा, रस नहीं मिलेगा। तो जहां मुझे वो रस पान करना नहीं मिलेगा तो फिर रसहीन जीवन में क्या अंतर है, क्या फर्क, क्या फायदा है? इसी बात को ब्रह्मा जी भी कहते हैं श्रीमद् भागवत में, येन्य रविनिदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यदो अनादृत युष्मदंग्रयः। वो कहते हैं कि हे प्रभु अरविंदाक्ष, हे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण, येन्य रविनिदाक्ष विमुक्त मानिनः, ऐसे कई लोग होते हैं जो अपने आप को विमुक्त समझते हैं, मुक्त समझते हैं कि मैं मुक्त हो गया हूं, जो आपके भक्त नहीं है। ये अन्य मतलब आपके भक्तों के अलावा ऐसे भक्त हैं जो निराकार में लीन होना चाहते हैं और अपने आप को मुक्त मानते हैं। अविशुद्ध बुद्धयः, उनकी बुद्धि वास्तव में शुद्ध नहीं है। येन्य रविनिदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयि अस्त भावात अविशुद्ध बुद्धयः, उनकी भावना गलत है और सोचते हैं कि वास्तव में मैं सबसे ऊंचे स्तर को प्राप्त कर चुका हूं, परम पदम ततः, बड़ी तपस्या करते हैं वो आरुह्य कृच्छ्रेण, बड़ी तपस्या करने के बाद सोचते हैं कि मैं मुक्त हो गया हूं, मेरे परम पद की प्राप्ति कर ली है। लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी क्योंकि उनकी बुद्धि अशुद्ध नहीं है, इसलिए क्या होता है, पतंत अधः, उनका पतन हो जाता है, फिर से निराकार ब्रह्म से वो भौतिक संसार में गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं, पतंत दो अनादृत, अनादर उन्होंने किया है। किसका अनादर किया है, युष्मद, आपके आपके क्या चरण कमलों को है, इसलिए आपके चरण कमलों का रस पान नहीं कर सकते हैं वो। इसलिए हालांकि वो समझते हैं कि हमने परम पद की प्राप्ति की है, लेकिन उस परम पद तथा कथित परम पद की प्राप्ति करने के बाद भी उनका पतन हो जाता है। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो निराकार ब्रह्म को प्राप्त नहीं करते, निराकार ब्रह्म के परे जो वैकुंठ लोक होते हैं, आध्यात्मिक लोक होते हैं, उनको प्राप्त करते हैं वो, और वहां भगवान का निजी संग प्राप्त करते हैं और भगवान के साथ रहकर लीला करते हैं। ये भक्तों की गति होती है। इसलिए हमें हमेशा ये चैतन्य महाप्रभु की चेतावनी याद रखनी चाहिए, क्या है, मायावादी भाष्य सुन ले होय सर्वनाश। इसलिए हम केवल भगवान के भक्तों के संग में आकर कृष्ण कथा और कृष्ण नाम सुनना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई
जब ज्ञानी लोग जो है जो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं तो योगी लोगों की गति क्या हो सकती
है? ये एक बार हमने भागवत क्लास में चर्चा की थी, चार्ट में हमने एक ड्राइंग किया था, आपको याद है, याद है क्या उत्तर है, अभी आप ही बताइए, किनको याद है, कोई बता सकते हैं? यही योगी भक्तों का संग करते हैं तो क्या होता है, भक्त बन जाते हैं, और फिर जो भक्तों की गति होती है वो गति उनको मिल जाती है, और अगर भक्त नहीं बने तो फिर नीचे, कि भक्तों का संग नहीं होता। हो सकता है कि केवल उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अणिमा लघिमा महिमा प्राप्ति ईशित्वा, ऐसे अलग अलग सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, है ना, अलग अलग जगह कोई शक्तियां प्रदान करना, योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अगर इनमें उसका मन डावाडोल हो जाता है तो फिर वो उसका पतन हो जाता है, फिर से भौतिक क्षेत्र में आ जाता है, इंद्र तृप्ति में लग जाता है अपने, फिर वो योग भ्रष्ट हो जाता है। ये दूसरी गति हो सकती है योगी की। तीसरी गति क्या हो सकती है, लोक में जाएगा फिर से लौट के आएगा, लेकिन और एक गति है कि वो अगर निराकार की उपासना करता है, हालांकि वो ध्यान का मार्ग स्वीकार करता है, लेकिन अगर उसके मन में विचार ये है कि भगवान निराकार है, तो वो उसकी गति भी ज्ञानी की गति की तरह होगी, निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा वो, ठीक है। तो योगी की गति ज्ञानी की गति हो सकती है, भक्त की गति हो सकती है, या नीचे भी कर्मी की गति हो सकती है, ठीक है।
जो भक्ति करते हैं और जो भक्त होते हैं वो भी ये क्या ब्रह्मेति परम दो स्तर से जाना ही पड़ता है, या सीधा वो भगवान के रूप को ही जान देते हैं?
नहीं, अलग से जानने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जिसने भगवान को जान लिया उसने परमात्मा और निराकार ब्रह्म दोनों को खुद ब खुद जान लिया।
लेकिन जब भगवत गीता में बोलते हैं कि जब तक कोई भी जीव खुद को आत्मा नहीं मानता या ब्रह्म स्थिति पे नहीं आता, तब तक उसको ये भी नहीं, भगवान की भक्ति भी करने की जो पात्रता थी वो भी नहीं आ सकती।
भगवत गीता में क्या कहा गया है,
जब तक वो खुद को ये शरीर नहीं आत्मा या ब्रह्म खुद को ब्रह्म नहीं मानता है, जो आत्मस्थिति पे नहीं आ सकता है, तो उसको भगवान के प्रति भक्ति करने के भी वो स्तर पे नहीं आ सकता है।
हाँ भी और नहीं भी, कौन से श्लोक की बात कर रहे हैं?
जैसे कि अभी प्रभुपाद भी इसमें बोलते हैं,
ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा में केवल शुद्ध भक्ति की बात हुई है कि जो व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में है, पूरी तरह से भौतिक कलमश से मुक्त है, ऐसी अवस्था में उसकी भक्ति शुद्ध हो जाती है। उसके पहले भी भक्ति कर सकता है, लेकिन वो भक्ति मिश्रित भक्ति कहलाती है, मिलावटी, उसमें मिलावट है, भौतिक इच्छाओं की मिलावट है उस भक्ति में। लेकिन हाँ, ये सही है कि किसी को अगर कोई ज्ञान नहीं हो तो भक्ति मार्ग में आना मुश्किल है। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिनके संस्कार अच्छे हैं, भले उनको ज्ञान न हो लेकिन भक्ति कर रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा है, किसी भक्त के घर में जन्म लेता है, उसको तो कोई ज्ञान नहीं है आत्मा क्या है, शरीर क्या है, लेकिन वो कीर्तन में शामिल होता है, बैठ जाता है, प्रवचन में बैठ जाता है, प्रसाद खाता है, भगवान का दर्शन करता है, वो भी भक्ति कर रहा है ना, उसको कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए भक्ति ही ज्ञान के ऊपर आधारित नहीं है। लेकिन फिर भी, क्योंकि हम संशय आत्मा हैं, हम बहुत कमजोर हैं, माया के बहुत चंगुल में जल्दी से फंस जाते हैं, इसलिए हमें ये सब ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमारी निष्ठा और श्रद्धा बढ़ जाती है। इसलिए हमें ये सब जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए रोज भागवत सुनना, रोज भागवत और गीता पढ़ना, ये सब करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है।
सुना प्रभु जी, जैसे आपने तोते का और पेड़ का उदाहरण दिया, तो वैसे मायावादी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे पानी की एक बूंद समुन्द्र में विलीन हो जाती है, तो कृपया इसका स्पष्टीकरण देंगे कैसे?
मायावादी
मतलब उदाहरण देते हैं कि जैसे पानी की एक बूंद समुन्द्र में विलीन हो जाती है तो सब एक ही हो जाते हैं, तो उसी प्रकार यदि हम मतलब निराकार ज्योति में विलीन हो जाएंगे तो एक हो जाएंगे, तो कृपया थोड़ा
इसके ऊपर वैष्णव आचार्य जवाब देते हैं। एक नहीं हो जाते, जब सूरज की किरणें पड़ते हैं फिर भी उसका वाफ बन के ऊपर चले जाता है ना, है ना, हमेशा लीन नहीं हो जाता, फिर से वो बूंद ऊपर चले जाते हैं, फिर से आते हैं नीचे, फिर जाते हैं ऊपर, फिर आते हैं बारिश के रूप में, तो उनका अस्तित्व रहता है। पानी तो पानी का बूंद पानी रहता है, तो इसलिए जीव कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। भगवान में लीन भी हो जाए लेकिन उसे केवल सत स्वरूप का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव नहीं होगा, लेकिन उसका अस्तित्व नष्ट कभी नहीं हो सकता। यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और कोई बात, टीका टिप्पणी, प्रश्न?
जो ब्रह्म ज्योति में लीन भी होते हैं, जो उनका मन बुद्धि अहंकार लीन होने के लिए जरूरी है कि उनका मन बुद्धि अहंकार जो वो ज्योति का स्थिति है उस स्थिति से होने, तो वो लीन कैसे हो सकते हैं?
नहीं समझे, नहीं क्या प्रश्न?
जैसे कि ये जो ब्रह्म ज्योति है भगवान से ही आती है और वो भी कौन से भाव में रहती है, या कौन सा उसपे ब्रह्म ज्योति का ये स्वरूप क्या है उसमें?
ब्रह्म ज्योति का स्वरूप निराकार है, जैसे सूरज की किरणें हैं, इनका कोई स्वरूप है? प्रकाश है केवल, ये भौतिक प्रकाश है, लेकिन वो आध्यात्मिक प्रकाश, उतना ही अंतर है, प्रकाश है दोनों। तो जैसे अगर कोई सोचे कि मैं केवल एक अणु बन के यहां प्रकाश में रहना चाहता हूं, ठीक है, भगवान बोलते रहो, लेकिन रसहीन है, कोई रस नहीं उसमें, वहां कोई काम नहीं, बैठे रहो ऐसे अनादिकाल अनंत काल तक। तो कोई भी जीव सोचेगा ऐसे ही यूं बैठूं, भौतिक कष्ट नहीं है लेकिन आनंद भी नहीं है, कोई रस भी नहीं है, तो इसलिए फिर उसका पतन हो जाता है। सोचता है भौतिक रस तो अनुभव करूं कम से कम, कोई तो रस मुझे चाहिए जीवन में, इसलिए फिर से नीचे आ जाता है, वहां कोई कार्य नहीं रहता।
एक छोटा सा संशय, आपने अभी कहा संशय आत्मा है, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ रामदास विप्र आता है ना?
हाँ, सनातन गोस्वामी या तो रघुनाथ भट्ट, दोनों में से एक हो सकता है, रघुनाथ भट्ट के। हाँ, चैतन्य चरितामृत में आता है इसका वर्णन, रघुनाथ भट्ट है क्या? हो सकता है, हाँ रघुनाथ भट्ट हो सकते हैं, हो सकता है रघुनाथ भट्ट शायद। चैतन्य चरितम देख के फिर से बता देंगे। नम्र थे, सब कुछ थे, लेकिन अंदर से मायावादी।
हरे कृष्णा, मायावाद इतना स्ट्रांग कैसा रहता है कि भक्तों को पतन करता है?
प्रभुपाद बताते थे मायावादी जो मायावाद जो है ये माया का आखिरी जाल है, बाकी सब जालों को काट 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 कर ऊपर आता है आदमी, फिर ये आखिरी जाल में फंस जाता है। अगर इस जाल को काट कर निकल गया तो फिर निकल गया, ऊपर भगवान के धाम में जा सकता है। इसलिए स्वरूप दामोदर बताते हैं महाभागवत, महाभागवत भी अगर सुनता है तो उसका भी चित्त फिर जाता है, उसका दिमाग फिर जाता है। महाभागव जन कृष्ण प्रेम धन जार, मायावाद सुन रे चित्त अवश्य फिरे तार। तो मायावाद भी अगर जिसका कृष्ण जिसके लिए कृष्ण प्रेम धन है वो भी अगर मायावाद सुनता है तो उसका चित्त भी दिमाग फिर जाता है। हाँ, हो सकता है ये निराकार है, बहुत कठिन है इसको निकालना दिमाग से। हम एक भक्त से मिले हैं, प्रभुपाद के शिष्य हैं, कई सालों से कृष्ण भावना मार्ग में रहे हैं। एक बार हमसे बात कर रहे थे, अच्छी तरह से पहचानते हैं, लेकिन कहने लगे मेरा एक सबसे बड़ी कठिनाई मेरे जीवन में एक ही है, आज तक मेरे हृदय में वो बात बैठती नहीं है कि भगवान एक व्यक्ति है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, 25 सालों से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये मायावाद मेरे हृदय में इतना घुस गया है। मैं भक्ति में आने के पहले ऐसे संस्था में जाता था, इतना मेरे हृदय में घुस गया है कि 25 साल के बाद भी अभी वो निकलता नहीं है। वैसे विश्वास करते हैं लेकिन बीच बीच में उनके हृदय में ठक करके संशय आ जाते हैं, अरे कैसे व्यक्ति कैसे हो सकते हैं, निराकार होना चाहिए। और मुझे भी याद है आज तक एक भक्त थे जिनको हम प्रचार कर रहे थे, आज एक मंदिर के प्रेसिडेंट है वो। जब वो भक्त बने तो अच्छी तरह से भक्ति कर रहे थे, हम बहुत खुश थे कि इतने अच्छी तरह से डेवलप हुए भक्ति में आए और अच्छा प्रचार कर रहे थे। फिर एक दिन जब हमने सोचा सब ठीक ठाक है, सब अच्छा है, कहने लगे हमको बात करना है आपसे, सब होगा कुछ, तो बैठे उनके साथ और कहने लगे कि मैं कैसे विश्वास करूं कि भगवान व्यक्ति है, नहीं बैठता है, नहीं बैठता, क्योंकि उन्होंने भी संग किया था पहले मायावादी कोई इसमें कोई मिशन में जाके। तो मैंने सोचा अरे बाप ये कहा, अभी मैंने सोचा इतने अच्छी तरह से भक्त बन गए हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल रोने की जैसी अवस्था हो गई थी उनकी, क्या करूं अब, क्या करूं, हृदय में टूट रहा है, कैसे कैसे मैं स्वीकार करूं, कैसे कुछ संशय ये जा नहीं रहा। फिर कितने घंटे बैठा मुझे याद नहीं, करते गए चर्चा, करते गए करते गए करते गए, फिर आखिर में वो शांत हो गए, फिर अभी फिक्स हो गए बिल्कुल, उसके बाद में फिक्स हो गए बिल्कुल, अभी कोई संशय नहीं कुछ नहीं। लेकिन कहने की बात यह है कि मायावादी इतना एक जहर है, इतना भीषण जहर है, एक बार भी आदमी इसको सुन लेता है फिर उसको बहुत तंग करती है, हैरान करती है हृदय में, सालों साल उसका पीछा छोड़ती नहीं है। जिसने मायावाद भाष कभी सुना नहीं है वो भाग्यशाली है ना। खाली स्लेट में बोर्ड में लिखना आसान होता है, जहां कुछ और लिखा हुआ उसको पोंछ कर निकालना कभी कभी कठिन हो जाता है। इसलिए बहुत हमें होशियार रहना चाहिए, मायावाद उसे सुनना चाहिए नहीं, इधर उधर जाके सुनना नहीं चाहिए। बहुत आकर्षक लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ये कथा चल रही है, वो कथा चल रही है, ये प्रवचन देने आए हैं, वो उधर प्रवचन देने आए हैं, कह नहीं सकते उनका क्या है। कितने बार भक्त हमसे आके कहते हैं कि उनका फिलोसफी हमारे जैसे ही है, वही है, वो भी भगवान की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, लेकिन वो तो ऊपर ऊपर से लगता है, थोड़ी गहराई में जाओ तो पता चलता है कि क्या है। इसलिए हमें बहुत होशियार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। हमने तो आपको केवल 2-3 उदाहरण सुनाए, ऐसे तो बहुत सारे हैं, कितने ही ऐसे भक्त हमारे पास आए, एक ब्रह्मचारी भी आए, बने भी वो ऐसे मायावादी आश्रम में ब्रह्मचारी थे पहले, फिर हमारे यहां आए ब्रह्मचारी बने, 1 साल बेचारे ने संघर्ष किया, इस मायावाद दर्शन के खिलाफ कितने प्रश्न पूछते थे, क्योंकि बहुत बैठ गया था हृदय में, हर एक श्लोक को तोड़ मोड़ के उसका शब्दार्थ ये वो, कितने घंटे घंटे बैठे उनके साथ। फिर एक बार कहे कि हमें जाना है, घर जाना है, कुछ काम है, तो ठीक है जाओ आके, कब आओगे? हाँ एक हफ्ते में आएंगे। फिर आए नहीं वापस, क्योंकि अभी वो एक साल हुआ संघर्ष करते करते, फिर वो नहीं कर पाए, हार गए। तो इसलिए बहुत जहर, ऐसे कितने उदाहरण है, कितने ही। तो सोचे कि जो ऐसे